जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय छः अध्याय का नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति श्लोक संख्या 88 और 89। तो इसका तात्पर्य नहीं 88 का, तो केवल मैं पढ़ रहा हूँ और फिर 89 बोर्ड में लिखा है। सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधने तो मत ईश्वर कृपा इथे की प्रमाणे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य कृपया आप सावधानी से कहें आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो प्रसंग आप लोग जानते हैं क्या चल रहा है, कितने लोग जानते हैं प्रसंग, कथा का प्रसंग क्या चल रहा है? बहुत कम लोग जानते हैं क्या चल रहा है। हाँ, तो ये जो बात चल रही है अभी, आप लोग जाप क्यों कर रहे हैं? अभी जाप नहीं करना चाहिए, यहाँ आकर के आप लोग जाप कर रहे हैं। जाप तो कहीं भी कर सकते हैं, इनकी कथा नहीं मिलेगी, क्लास नहीं मिलेगा। मंदिर में आकर के आप क्लास में बैठ कर के जाप कर रहे हैं, जैसे सब लोग प्रणाम कर उसमें जाप कर रहे हैं, आप लोग मतलब सीखे नहीं यहाँ शिष्टाचार क्या है। मंदिर में आकर के आप जाप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप मंदिर के जो और भी कार्यक्रम हैं इनका लाभ नहीं उठा रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। आपको सीखना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। जाप तो आप कभी भी कर सकते 24 घंटे कहेंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये नहीं मिलेगा हमेशा के लिए। अभी आप सुनिए ध्यान से, अभी जाप मत करिए। तो ये जो कथा प्रसंग है वो चल रहा है, ये कौन सा स्थान है, कौन से स्थान में है? जगन्नाथपुरी में है, चैतन्य महापुरुष जगन्नाथपुरी में है। और जगन्नाथ का दर्शन करके सबसे पहली बार जगन्नाथपुरी में आए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया और मूर्छित हो गए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको जो है अपने घर में मतलब भिजवा दिया है और परीक्षण भी किया है, तो पता चला कि प्रेम का बहुत ऊंचा धरातल है ये। हाँ, ये मतलब जो मूर्छा है इनकी, ये प्रेम की ऊँचे बहुत ऊँचे धरातल की मूर्छा है। जो शास्त्रों में बहुत विद्वान थे, लेकिन अब गोपीनाथ आचार्य से बातचीत चल रही है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत कम उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है, केवल 24 वर्ष की अवस्था है और बहुत जो है सुंदर हैं और जवान हैं, तो कैसे अपने संन्यास का पालन कर पाएंगे? इंद्रियां तो बड़ी चंचल होती हैं इस अवस्था में, तो मैं इनको जो है वेदांत सूत्र की शिक्षा दूंगा और इनको जो है संन्यास में भी जो है भारतीय सन्यासी निम्न धरातल के सन्यासी हैं तो मुझे धरातल का सन्यासी बनाऊंगा। तो मतलब जब भगवान के ऊपर फिर भी उनका जो है क्या है कुछ स्नेह भाव तो है ही है, स्नेह भाव तो है ही है, लेकिन भगवान नहीं पहचान पा रहे हैं कि भगवान है साक्षात। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आप जो है बहुत अज्ञान में हैं, जो इनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है ना। तो ये बात हुई, तो फिर जो है गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि आप नहीं इनको पहचान पाते हैं, आपके पास शास्त्रों का तो बहुत ज्ञान है, शास्त्रों के ज्ञान से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान सकता है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो उत्तर है, अब इसमें जो मैंने पढ़ के सुनाया है सार्वभौम भट्टाचार्य का उत्तर है ना, और उत्तर देंगे ही है? उत्तर क्या है? प्रश्न के रूप में। तो प्रश्न कर रहे हैं कि आप सावधानी से कहिए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको कृपा प्राप्त हो चुकी है और आप इनको इस कारण से पहचान गए। ये भी एक मतलब तर्क है और ये भी एक स्वाभाविक तर्क है। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि पांडित्य से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान सकता है कि चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, ये तो उनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति पहचान सकता है। तो गोपीनाथ आचार्य का ये इशारा है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है तो मैं उनको भगवान के रूप में पहचानता हूँ। तो ये स्पष्ट नहीं कहा शिष्टाचार के अनुसार, ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर कृपा है आपके ऊपर कृपा नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। लेकिन ये कहा कि आप नहीं पहचान सकते उनको, पांडित्य से शास्त्रों के ज्ञान से आप इनको नहीं पहचान सकते, लेकिन शास्त्रों का निर्णय यही है कि पांडित्य से कोई पुरुषोत्तम भगवान को नहीं पहचान सकता, शास्त्रों का निर्णय यही है। तो सारंग भट्टाचार्य ने क्या उत्तर दिया, मतलब प्रश्न के रूप में उत्तर दिया, प्रश्न किया कि फिर आप सावधानी से कहिए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है इसलिए आप पहचान पाते। सारंग भट्टाचार्य भी जो है ये नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने कल्पना से किसी को भी भगवान मान ले। अब गोपीनाथ आचार्य चैतन्य वहां पर भगवान मान रहे हैं, इसके बीच में जो है दोनों का जो है मतलब तर्क वितर्क जो हो रहा है वो बड़े ऊंचे धरातल का है। तो सारंग भट्टाचार्य का भी जो है गलत तर्क नहीं है, है ना। भगवान ने भी गीता में कहा है भक्तिया माम अभिजानती, भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ तत्व से। तो गोपीनाथ आचार्य ये दावा नहीं कर सकते कि मैं भक्त हूँ इसलिए मैं जान सकता हूँ, इसलिए मैं जान पाया, क्योंकि भक्त का ये शिष्टाचार नहीं है कि वो कहे कि मैं भक्त हूँ। तो गोपीनाथ आचार्य ये नहीं कह सकते कि भगवान ने गीता में कहा है कि भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ और मेरे अंदर भक्ति इसलिए मैं जान पाया। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है किस तरह से बातचीत हो रही है जैसे कि अपना कुछ शिष्टाचार भी भंग ना हो है? और जो विषय का निर्णय भी हो सही सही। तो सारंग भट्टाचार्य ये कह रहे हैं। अब गोपीनाथ आचार्य क्या कहते हैं, अब इसको जो है आप लोग इसको आप लोग जो है आप दोहराइए। आचार्य का ही वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाते प्रमाण, आचार्य का ही वस्तु विषय हसे है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाते प्रमाण, आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाते प्रमाण। शब्दार्थ बोलिए। आचार्य कहे, गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, वस्तु विषय परम पूर्ण के बारे में है वस्तु ज्ञान परम का ज्ञान, वस्तु तत्व परम सत्य का ज्ञान ज्ञान है कृपाते कृपा का प्रमाण प्रमाण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। तो समझेंगे फिर से अनुवाद को, गोपीनाथ आचार्य क्या उत्तर दे रहे हैं कि सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। आया समझ में, क्या उत्तर दिया, विचार करिए क्या उत्तर दिया हमने, समझ में आया क्या? हाँ, परम सत्य का ज्ञान होना ही प्रभु की कृपा का प्रमाण है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है उत्तर, उत्तर तो पर्याप्त नहीं है। एक प्रश्न फिर भी बना हुआ है, सार्वम भट्टाचार्य का जो प्रश्न था कि क्या प्रमाण है कि आपको कृपा हो गई भगवान की और आप भगवान को पहचान गए, अगर मैं मानूं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे, अपनी कल्पना से आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ तो मेरे लिए क्या प्रमाण है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि आप उनको पहचान पा रहे हैं, है ना? तो उनका जो उत्तर है कि अगर परम सत्य का ज्ञान हो गया है मुझे तो ही कृपा का प्रमाण है। तो वो जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर तो यही है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जो व्यक्ति उत्तर पाना चाहता है उसके लिए पर्याप्त उत्तर नहीं है, है ना? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य से पूछा, इनका संबंध है क्या है, सार्वभौम भट्टाचार्य साले हैं और गोपीनाथ आचार्य जीजा हैं, साले जीजा में वाद विवाद हो रहा है, हैं? जो साला है वो भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, साला एक गाली भी तो होती है कि साला भगवान को नहीं समझ रहा है। और जीजा समझ रहा है भगवान को। तो यहाँ सार्वम भट्टाचार्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, सार्वम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य से पूछा, भले ही भगवान ने मुझ पर कृपा ना की हो, ठीक है, सार्वम भट्टाचार्य का कहना है भले भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं की है किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की है कि तुम उनको पहचान रहे हो सकता है चैतन्य महापुरुष सामान्य मनुष्य हैं और आप अपनी कल्पना से भगवान समझ रहे हैं उनको, है? तो इससे कैसे, कृपया इस बारे में हमें बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियाँ भिन्न है, अतः उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझा जा सकता है। परम सत्य में एक ही जगह सारी शक्तियाँ रहती हैं, विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु है, परास शक्ति रूप विद्याविष्ट हुए थे, है ना? प्रभुपाद जी का भी उत्तर बड़ा गहरा है, है ना? तो ये जो अनुभूति है ये भगवान अगर किसी को दे रहे हैं तो वही समझ पाएगा, है ना? लेकिन वो जो है किसी को समझा नहीं सकता, है ना? जैसे कि आपने कोई चीज़ खाई है, जैसे मान लो रसगुल्ला आपने खाया, है ना? तो जिसने नहीं खाया आप उसको क्या समझा सकते कैसा स्वाद है, आप नहीं समझा सकते। उसी प्रकार जिसने भगवान को पहचान लिया है तो वो जो है वो तो समझता है कि मैं भगवान को जान रहा हूँ, ये भगवान है, है? लेकिन वो अगर सिद्ध करना चाहे कैसे सिद्ध करें, है ना? तो ये समस्या है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह वेदों का कथन है कि परम सत्य विभिन्न शक्तियों से युक्त हैं, जब कोई परम सत्य की शक्तियों के गुणों को समझता है तो वह परम सत्य से अवगत हो जाता है। भौतिक स्तर पर भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति से जान सकता है। उदाहरणार्थ जब ऊष्मा होती है तो ये समझा जाता है कि अग्नि के कारण है। ऊष्मा होती है अग्नि के कारण। मान लीजिए आप अग्नि को नहीं देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए कि मैं इधर देख रहा हूँ और आप जो है आरती आरती का जो दिया है वो मुझे दिखाने के लिए ला रहे हैं और मैं इधर देख रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने इधर किया, गर्मी लगी मुझे, अरे तो मैं देखता हूँ आग है यहाँ, है कि नहीं। तो अगर आप जो है अग्नि को नहीं देख रहे हैं और आरती की जो ज्योति है अगर थोड़ा सा इधर आपने लगाई तो मुझे गर्मी लगेगी, मैं कहूँ अरे यहाँ तो आग है ना, तो फिर मैं अपनी गर्दन भी मोड़ूंगा। और गर्दन अगर ना भी मोड़ूँ, गर्दन ना भी मोड़ूँ किसी कारण से, अगर गर्दन मेरी नहीं मुड़ रही है तो मैं समझ तो जाऊँगा कि आग है इधर है, क्योंकि गर्मी लग रही मुझे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, जब ऊष्मा होती है तो समझा जाता है कि अग्नि के कारण है, अग्नि की ऊष्मा का अनुभव प्रत्यक्ष किया जाता है, भले ही अग्नि ना दिखे किंतु ऊष्मा के अनुभव से अग्नि को खोजा जा सकता है। अक्सर तो आग आप पहले देखते हैं, ऊष्मा बाद में लगती है ना। जैसे आरती है तो जो आरती की जो ज्योति है आप देखते हैं अग्नि, है ना, और उसकी ऊष्मा का अनुभव तो बाद में आप करते हैं, अगर देर तक आप हाँ पास में रखेंगे तब पता चलेगा। अब फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आग अगर आप नहीं देखते हैं, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ और किसी ने इधर किया बहुत पास कर दिया तो मुझे गर्मी लगेगी, है ना। तो ये तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, इसी तरह यदि परम सत्य के गुणों का किसी को अनुभव हो सके तो ये समझना चाहिए कि उसने भगवत कृपा से परम सत्य के तत्व को समझ लिया है। यहाँ प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य अगर नहीं मान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को भगवान, तो उनका एक ये भी गुण है, ये भी एक गुण माना जाएगा कि ऐसे किसी को जो है हम मतलब आंखें बंद करके भगवान नहीं मानेंगे। जब तक कि शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा कोई किसी बात का निर्णय ना हो तो हम ऐसे भाई आप उनको भगवान मानते हैं तो हम भी भगवान मानते हैं, रजनीश हैं ये भगवान हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कितने भगवान हैं, कितने भगवान हैं, वैसे कोई भी व्यक्ति मतलब कहेगा कि मैं तो उनको भगवान मानता हूँ इसलिए मैं भगवान हूँ और मैं पहचान गया भगवान को, तो ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर जो है जो प्रश्न उत्तर जो हो रहे हैं तो इनमें कुछ मतलब गुण है, इसमें कुछ गुण है ना। जैसे केशव कश्मीरी चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे और उन्होंने जो है मतलब एक निमाई पंडित के नाम से सुना था कि भाई बहुत विद्वान है और अवस्था बहुत कम है लेकिन बहुत विद्वान है, और फिर जो है वो परास्त भी हो गए तो भी नहीं पहचान पाए और बहुत दुखी हो गए, बहुत लज्जित हो गए, मन ही मन में बहुत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे और रात्रि में सोए नहीं, रात भर मंत्र का जप करते रहे और ये प्रश्न पूछते रहे सरस्वती से कि आज आपने मुझको जो है एक बालक से मतलब मैं हार गया और आपने मेरी सहायता नहीं की, जबकि आपने मुझे वरदान दिया था कि तीनों लोगों में कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा शास्त्रार्थ, और आज मैं एक बालक के सामने हार गया और आप देखती रहीं आपके वरदान का क्या महत्व रहा। और इस भावना से वो रात भर मंत्र का जाप करते रहे। तो फिर सवेरे का टाइम कुछ हुआ, रात भर जागे तो कुछ नींद आती है ना, होता ना ऐसा, नींद आई अभी हो रहा है कुछ है? अरे वो वही बात कर रहे हैं, नींद आ रही है। तो जब नींद आई तो सरस्वती ने जो है सपना दिया है? और कहा कि देखो मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था उसका लाभ ये नहीं था कि तुम सब को जो है पराजित करो शास्त्रार्थ में, ये लाभ नहीं था, असली लाभ ये था कि तुम्हें आज भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, तुमने भगवान से बातचीत की है, है? तुम्हें भगवान का संग प्राप्त हुआ है, ये असली लाभ है। जिसको कि तुम समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, ये मुझे बहुत बड़ा ये कष्ट हो रहा है, ये कष्ट की बात नहीं है, ये तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुमको भगवान का संग प्राप्त हुआ है। अब तुम जो है अब उनकी शरण लो, तुम उसे क्षमा मांगो, है? और वे जो है मतलब साक्षात भगवान है, मेरे पति हैं, सस्ती ने कहा, है ना। अब वो कैसे नहीं माने कि भगवान, और फिर भगवान की गुण पुष्ट भी हो गए कि भगवान में कितने गुण हैं कि हर बार मुझे परास्त किया और फिर भी मेरा सम्मान ही करते रहे, जबकि मैं परास्त करने के लिए आता हूं, किसी को परास्त करता हूं, जीवन भर मैंने परास्त किया तो लज्जित किया, जिससे मैंने शास्त्रार्थ किया उसको परास्त किया, उसको लज्जित किया, विजय पत्र लिखवाया, मैंने अपना सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये भगवान ही है, और कौन हो सकते हैं, भगवान के सिवा कौन हो सकते हैं कि वे मुझे परास्त भी करते रहे हर बार और फिर भी मेरा सम्मान बढ़ाते रहे। उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि मैं विजय हो गया, अब विजय पत्र लिखो कि आप हार गए मुझसे, भगवान की सेवा कौन हो सकता है, है ना। तो अब जो है उनको शास्त्रों में जो भगवान के गुण बताए गए हैं कि उनके अंदर घमंड नहीं है, भगवान के अंदर घमंड नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो सृष्टि ने जब बताया वो फिर उनको मतलब पुष्ट हुआ कि हाँ ये भगवान का ही गुण हो सकता है और किसी का ऐसा गुण नहीं हो सकता। उन्होंने फिर भी जो है सब अपने शिष्यों के सामने मेरा सम्मान ही किया, सम्मान ही किया, और फिर अंत में ये कहा कि अब आप बहुत थक गए हैं, आप विश्राम करिए, बाद में चर्चा करेंगे। बहुत सम्मान के साथ मुझे जो है विदाई दी, परास्त भी किया और इस तरह से मतलब सम्मान भी किया, ये भगवान की सेवा और किसी का गुण नहीं हो सकता है। तो सबको जो है मतलब स्पष्ट हुआ। तो इस तरह से जो है मतलब अगर किसी कोई भगवान को अगर जान लेता है तो ये भगवान की कृपा है, है ना। लेकिन अगर वो भी अगर मान लो किसी को बताएं, है ना, लेकिन अगर उसके ऊपर महामाया का प्रभाव है या योग माया का प्रभाव है तो भगवान नहीं स्वीकार करेगा। जैसे सची माता हैं, माता सची हैं, तो निमाई को पुत्र रूप में मानते हैं, लेकिन उनको कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि निमाई भगवान है, उनका पुत्र भगवान है, है? देवता लोग आते हैं, स्वप्न में आते हैं, और जागृत अवस्था में भी देवताओं को देखती हैं कि यहाँ चरणों में पड़े हुए हैं, धूल में पड़े हुए हैं देवता लोग, है ना। लेकिन फिर उनको लगता है कि ये मेरा सपना है, मेरा भ्रम है, और निमाई तो मेरा पुत्र है। तो ये क्या है, योग माया का प्रभाव, योग माया का प्रभाव। अब कोई अगर कहे उनसे कि आप जो है निमाई को अपना पुत्र क्यों मानती हो, ये तो भगवान है साक्षात, है? इनकी पूजा करो, है? आरती उतारो, इनको अपना पुत्र मत समझो, हाँ, तो सची माता जो है डांट देगी आपको, है? चुप, निमाई तो मेरा पुत्र है, क्यों, योग माया का प्रभाव है, सची हैं, जगन्नाथ हैं, तो भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं आंखों से, लेकिन भगवान अपने योग माया से उनके ज्ञान को ढक देते हैं और फिर भी अपने को, हाँ, वे उनको जो है अपना पुत्र मानते हैं, क्योंकि भगवान उनका स्नेह चाहते हैं, स्नेह पाना चाहते हैं, तो योग माया का प्रभाव। तो ये योग माया के प्रभाव से कोई व्यक्ति भगवान को ना पहचाने तो वो अज्ञानी माना जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये अज्ञानी माना जाएगा, ये बड़े सौभाग्य की बात है, हैं? तो वो अज्ञान नहीं है, लेकिन महामाया जब ज्ञान को ढकती है तो वो अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो जीव जो है भगवान से दूर जाता है। योग माया जब ज्ञान को ढकती है, अरे बोल, बहुत नींद का प्रभाव हो रहा है, जब योग माया ज्ञान को ढकती है तो जीव भगवान की ओर निकट जाता है, और भगवान के निकट आता है, सेवा का उसे अवसर प्राप्त होता है, है ना। इसलिए अज्ञान नहीं है, ज्ञान ढका हुआ है लेकिन अज्ञान नहीं है। ये जब महामाया ढकती है जीव के ज्ञान को तो भगवान नहीं पहचानता है भगवान को, तो उनसे दूर जाता है, तो ये अंतर है। तो अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता 7:25 में कहा गया है ना हम प्रकाशा सर्वस्य, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधिकार में है कि वे हर एक को दर्शन ना दें। भगवान के अधिकार में है कि वे हर एक को दर्शन ना दें, मतलब कोई दर्शन दे रहे हैं लेकिन तो भी कोई पहचान नहीं पा रहा है। ना हम प्रकाशा सर्वस्य, सब लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं प्रकाशित नहीं हूँ उनके सामने। वो देख रहे हैं लेकिन तो भी नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति है वो देख रहे हैं। ना हम प्रकाशा सर्वस्य, तो उनके अधिकार में है कि भी अगर ना पहचान कराएं अपनी तो कोई उनको पहचान नहीं पाएगा। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन धारण किया, तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि ब्रजवासी लोग जब सोचते हैं कि ये कैसे हमारा बालक हो सकता है, कैसे एक सामान्य बालक हो सकता है, या कुछ ब्रजवासियों ने पूछा कि पुत्र तुमने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि मुझे रात में गोवर्धन महाराज ने सपना दिया था कि ये संकट आएगा और उस समय तुम मुझे उठाना, मैं उठ जाऊँगा। तो गोवर्धन जो पर्वत हैं वो हमारे देवता हैं, तो वो जो है स्वयं अपने इच्छा से उठ गए मेरे हाथ में, आप कौन पहचान पाएंगे। हरि बोल, ठीक है आवाज़ ठीक है। अगर भगवान अपने को छिपाए तो कौन पहचान सकता है। अगर मान लीजिए भगवान के हाथ पैरों में निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं भगवान के, क्या है, वज्रांकुश ध्वज लांछनाढ्यम, वज्रांकुश ध्वज लांछनाढ्यम, ध्याय चरम भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सर्वरोह लांछनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वज कमल, ये चिन्ह होते हैं भगवान के कहाँ, सुन ही रहे ना इधर उधर, कहाँ ध्यान है, क्या कह रहा हूँ मैं, भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं, वज्रांकुश ध्वज सर्वरोह लांछनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वज कमल, ये सब चिन्ह होते हैं। तो भगवान के हाथ पैरों में वो चिन्ह देख लो तो निश्चित हो जाएगा कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन अगर भगवान अपने चिन्हों को भी अगर छिपा लें तो आप कैसे पहचान पाओगे। तो भगवान को पहचानने का कोई उपाय नहीं है, सामान्य वस्तुओं में तो आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं पहचानने का कि भाई ये सचमुच क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लो जो कि रस्सी है ना, अब सर्प का भ्रम हो रहा है रस्सी में, अगर मान लो सर्प का भ्रम हो रहा है ना, तो आप दूर से कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि भाई सर्प है या रस्सी है, कुछ प्रयोग कर सकते हैं आप जो है, मतलब आपको पता चल जाए। जैसे हम लोग जो है बचपन में जब गए थे तो कीरत सागर, एक तालाब है कीरत सागर उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है एक सांप पड़ा हुआ था, तो सांप को हमने देखा, काफ़ी बड़ा सांप था पड़ा हुआ था, तो हम बच्चे लोग थे, कई बच्चे थे, तो आपस में जो है चर्चा कर रहे थे सांप मरा है जिंदा है, मरा हुआ जैसा लग रहा था एकदम पड़ा हुआ है, मरा जैसा सांप मरा है जिंदा है ना। तो हम लोगों ने क्या किया परीक्षा करने के लिए, कंकड़ फेंका है, कंकड़ फेंका और जैसे ही कंकड़ फेंका एकदम ऐसे उठा वो और देखा हमारी तरफ, उसने ऐसे सिर उठाकर एकदम देखा उसने हमारी तरफ, हम भागे बड़े जोर से भागे उसको देख करके। तो ये तो जो है मतलब ऐसी जीव हैं या ऐसे वस्तुएं हैं कि जिनमें हम प्रयोग कर सकते हैं और सही गलत का हम मतलब निर्णय कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे जितने प्रयोग हैं भगवान उनसे ऊपर हैं। अपने को अगर वो छिपाना चाहें तो आप किसी प्रकार से भी नहीं जान सकते, किसी प्रयोग से भी नहीं जान सकते कि वो भगवान है, है ना। या तो महामाया काम करेगी आपके ऊपर या योग माया काम करेगी जिससे कि आप उनको नहीं पहचान पाए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधिकार में है कि वे हर एक को दर्शन ना दें, सेवोन मुखे ही जयवादो स्वयं स्फुरत्यधा। जब भगवान भक्त की सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तब वे भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। सेवोन मुखे ही जयवादो, जेवा से प्रारंभ करके अगर आप सेवा करते हैं तो जेवा से दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। पहली सेवा क्या है? हरे कृष्ण का आप जो है जाप करते रहो दिन रात। और दूसरी सेवा एक निकालने की सेवा है, मतलब उनका नाम निकालो मुख से। और एक है अंदर डालने की सेवा कि भगवान का प्रसाद अंदर डालो, है ना। जेवा की दो सेवाएं हैं, एक बाहर निकालना है एक अंदर डालना है, तो स्वयं ही सेवा। तो इससे फिर सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी इससे, और स्वयं ही स्मृति तो वह स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे, स्वयं ही अपने को प्रकट करेंगे, आप पहचान पाएंगे उनको, है ना। तो ये जो है सेवोन मुख ही जेवा लो। और गीता में क्या भगवान कहते हैं? भक्तिया माम अभिजाना था, वही बात है ना। यहाँ सेवा कहा है, वहाँ पर भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजाना थी या वान यश्चास्मि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मुझे जान पाते हैं। तो वही चीज़ है गीता में, भगवान भक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ चैतन्य चरितामृत में सेवा इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना है ना। ये तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान भक्त की सेवा से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तब वे भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान की कृपा बिना उन्हें समझा नहीं जा सकता, परम सत्य को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, यही भगवद गीता का निर्णय है। परम सत्य को चिंतन के द्वारा नहीं समझा जा सकता, यही भगवद गीता का निर्णय है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो चिंतन के द्वारा आप निर्णय नहीं कर सकते, है ना। जैसे चिंतन के द्वारा आप निर्णय नहीं कर सकते कि रस्सी है या सांप। अगर मान लीजिए इतना मतलब प्रकाश नहीं है, प्रकाश बहुत कम है, जैसे सवेरे होता है ना, कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश होता है, तो कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश है, तो जो रस्सी है या सांप है उसका आप अंतर नहीं जान सकते, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति की आंखों में ज़्यादा रोशनी होती है तो उसको तो स्पष्ट पता चलता है कि ये रस्सी है या सांप नहीं, आप समझ रहे हो। तो जिस व्यक्ति की आंखों में ज़्यादा रोशनी है और किसी की आंख में धुंधलापन है, तो धुंधला जिसकी आंखों में धुंधलापन है तो वो निश्चित नहीं कर सकता है कि वो रस्सी है सांप है, तो वो कहेगा कि तो रस्सी है, क्योंकि सामान्य रूप से रस्सियाँ ही रस्सियाँ होती हैं, सांप तो बहुत कम होते हैं। लेकिन जिसकी आंखों में ज़्यादा रोशनी है, ज़्यादा तेज है जिसकी आँखें हैं, तो वो जो है समझ रहा है कि ये सांप है, है ना। अब वो अगर समझ रहा है कि ये सांप है, है ना, अब आपस में अगर चिंतन करें तो चिंतन के द्वारा कैसे पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता, चिंतन के द्वारा तो पता नहीं चल सकता, कुछ और प्रयोग करने पड़ेंगे ना, भी रस्सी है सांप है, है ना। लेकिन उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है जिसको जिसकी आँखें ज़्यादा तेज हैं, उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको दिखाई पड़ रहा है ये सांप है, आप समझ रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य को जो है कोई संशय नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्हें कोई संशय नहीं। तो इसलिए जिसके पास इतनी दृष्टि है कि वो देख रहा है कि सांप है रस्सी नहीं है, और जो सामान्य व्यक्ति वो कहता है हर जगह रस्सियाँ दिखाई पड़ती हैं तो ये भी रस्सी है सांप नहीं है, तो चिंतन के द्वारा कैसे निष्कर्ष निकल सकता है। और जिसके पास आँख है ज़्यादा तेज देख रहा है कि सांप है, वो कैसे प्रमाणित कर सकता है कि ये सांप है? वो कह रहा है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सांप है, है? तो वो कह रहा है यही प्रमाण है कि सांप है, है? इसका प्रमाण क्या है कि मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये सांप है, और क्या कहेगा और क्या उत्तर देगा आप बताइए, है? पत्थर मार के ना, पत्थर मार के चलो इसमें तो आप प्रयोग कर सकते हैं, भगवान के साथ तो प्रयोग नहीं कर सकते पत्थर मार के, भगवान के साथ कोई प्रयोग सफल नहीं होगा भगवान के साथ, क्योंकि अगर उनको छिपाना है, है ना, तो उनका जो है जो कार्य है वो हमारे इंद्रियों से बहुत परे अधोक्षर है। तो चिंतन के द्वारा, अब यहाँ पर चिंतन की ही एक बात है, तो चिंतन के द्वारा तो नहीं जान सकते, है? अगर आपको जानना है तो आप सेवोन्मुखे ही सेवा, तो जेवा के द्वारा आप सेवा करिए, तो भगवान स्वयं जनाएंगे। भगवान जो है जिसको जनाना चाहते हैं स्वयं जनाएंगे। या अगर आप ये तर्क करें कि अगर ये भगवान है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है भगवान है, ये भगवान है या मैं भगवान हूँ, तो आप क्या उत्तर देते हैं? आप प्रश्न करते हैं कि अगर आप भगवान हैं तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो आप उठा के दिखाओ। गोवर्धन पर्वत नहीं, 10 किलो का ही जो है वजन, 7 दिन तक उठा के दिखाओ। तो आप ही प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कोई लीला करी नहीं कि गोवर्धन पर्वत उठाया हो। अब किस आधार पर कहें कि ये भगवान हैं कि भैया आप करें संतुष्ट? और भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया तो भी ब्रजवासियों को जो है मोहित कर दिया, और क्या कहा कि मुझे गोवर्धन महाराज ने ही सपना दिया और ये कहा कि मैं उठ जाऊंगा, तुम उठाना तो मैं उठ जाऊंगा। अब लोग भगवान ने अपने को छिपा लिया। भगवान अपने को अगर छिपाना चाहते हैं तो अपने को छिपा लेते हैं ना। तो किस आधार पर कहा जाए चैतन्य महाप्रभु है जी? शास्त्रिक प्रमाण। तो शास्त्र में है, कई जगह संकेत हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कई जगह संकेत हैं शास्त्र प्रमाण। और इसके बाद फिर जो है उनकी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में जो उनके गुण प्रकट होते हैं, तो जिसके पास मतलब भक्ति है तो भक्ति के द्वारा जो है वो इन गुणों को भगवान की गुण मान सकता है, समझ सकता है कि ये भगवान के ही गुण है। ऐसा ऐसा जो है चरित्र और किसी का नहीं हो सकता है, भगवान के साथ है उनके द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी हुई है ना। खैर भविष्यवाणी तो भक्तों ठाकुर ने भी की, तो वे तो भगवान नहीं है। तो कुछ गुण ऐसे हैं उनकी लीलाओं में, उनके चरित्र में, जो कि जो भक्त हैं तो भक्ति के द्वारा वे जो है इन गुणों से भगवान को जान सकते हैं कि ये भगवान के कैसे गुण हैं, भगवान कितने दिव्य गुण हैं, इस तरह से जाना जा सकता है। तभी हमारे पास कुछ समय है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है चर्चा? हाँ आप लोग, ये हैंड माइक नहीं है, हैंड माइक नहीं है, जोर से बोलो, जोर से।
वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, थोड़ा सा
यहाँ पर गोपीनाथ आचार्य जो उत्तर दे रहे हैं वो ये उत्तर दे रहे हैं कि अगर जो है वस्तु का ज्ञान अगर मुझे हो रहा है तो इसका मतलब यही प्रमाण है कि मेरे ऊपर कृपा है भगवान। उन्होंने मतलब ये नहीं कहा सीधे कि मेरे ऊपर कृपा है, मतलब उन्होंने कहा कि अगर वस्तु का ज्ञान किसी को हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कृपा है भगवान। तो उत्तर तो यही है, उत्तर तो यही है, लेकिन जो प्रश्न करने वाले के लिए क्या है, प्रश्न ही बना रहे।
तो जी इसमें ना वो अगर ऐसे मैं जब पढ़ रहा था ऐसे तो लग रहा था वस्तु तत्व का ज्ञान भगवान की कृपा से होता है, लेकिन वस्तु का विषय जैसे हारमोनियम या फिर ये अर्थ वाटर फायर एयर इथर या फिर भौतिक एलिमेंट्स हैं, तो ये इनका विषय के बारे में भौतिक ज्ञान तो अलग बात है, लेकिन इसका तत्व जो है ये कृष्ण से आ रहा है सब।
नहीं नहीं,
उसके रियलाइजेशन
हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर इसको इसी तरह समझो जैसे सांप है रस्सी है, आपको जो है मतलब भ्रम हो रहा है कि सांप है रस्सी है, रस्सी है आप नहीं सांप है, आपको रस्सी का भ्रम हो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति देख रहा है कि ये सांप है। यहाँ पर इतना ही समझो, मतलब अभी बहुत गहराई में हम नहीं जा रहे हैं। हाँ जी आप
श्लोक से पहले जो घटना हुई थी जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तब जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए थे वो जैसे कि जगन्नाथ का दर्शन किए तो वो एकदम मूर्छित हो गए थे, क्योंकि उनमें वो भाव था वो कोई दूसरे भक्त में वहाँ पर नहीं था। और जब वो गिर गए थे, जब केवल गोपीनाथ आचार्य उनको पहचाने और वहाँ से उनको सर्वभौम
नहीं गोपीनाथ आचार्य तो थे ही नहीं उस समय, सार्वभौम भट्टाचार्य ही थे। और वो उन्होंने जो है मतलब केवल इतनी समझा कि ये कोई मतलब भगवान के प्रेम के बहुत ऊंचे धरातल पर कोई व्यक्ति है, ये जो सामान्य पंडे हैं वो तो सोचे पागल आदमी है, ये तो पागल व्यक्ति है, है ना। तो वो इतना इतना पहचान पाए कि ये व्यक्ति जो है, और शास्त्रों के द्वारा है कि भाई ये जो है, और परीक्षण भी किया है, नाक के आगे जो है रुई रखी हिल रही है, ये सब परीक्षण किए, भाई प्रेम के बहुत ऊंचे धरातल के लक्षण हैं ये, इतना पहचान पाए।
हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे लेक्चर बताया। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया कि अगर किसी को ये ज्ञान है भी कि ये स्वयं भगवान है, फिर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को जिस पर महामाया का प्रभाव है उसे नहीं बता सकता, जैसे कि गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन वो नहीं बता पा रहे, तो फिर प्रीचिंग का तो यही पर्पज।
हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। फिर प्रचार हम कैसे करें? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हम प्रचार क्या करते हैं, हम प्रचार करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। अब वो इसमें भी जो है अगर वो तर्क करे कि ये आप क्यों कीर्तन करते हैं, हा? तो आप अगर कहते हैं भगवान का नाम है, कहता नहीं भगवान का नाम नहीं है ये, तो फिर आप जो है उस पर जो है आप ये अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना भी अपराध है। तो आप जो है इसको मंत्र बताते हैं कि ये मंत्र है, ये जो है मतलब भगवान का नाम नहीं है, आप नाम मत बताइए, आप ये मंत्र बताइए कि ये मंत्र है, आप समझ रहे हैं। मंत्र जैसे कि नारद जी ने रत्नाकर नाम के डाकू को क्या कहा, तुम मरा मरा बोलो, तो राम राम क्यों नहीं कहा? तो सामान्य लोग तो यही कहते हैं कि भाई राम उनके मुँह से नहीं निकलता था, ऐसी बात नहीं कि राम नहीं निकलता था मुँह से, लेकिन वो चूँकि भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे तो उन्होंने कहा कि मरा मरा बोल, अपराध मतलब भगवान के प्रति द्वेष की भावना है या नास्तिकता की भावना है तो अपराध ना हो नाम का, इसलिए उन्होंने जो है नाम आभास दिया, नाम आभास है, जिसमें कि वो मरा मरा एक मंत्र समझ करके वो जप करते रहे। इसलिए चीन में भी जो प्रचार हो रहे हैं, तो गिरधारी स्वामी बता रहे थे, बहुत साल पहले की बात है कि चीन में प्रचार करते थे, कैसे करते थे, उन्होंने कहा कि अगर हम भगवान की चर्चा करते हैं भारत में तो हजारों की संख्या में लोग पास आते हैं, और चीन में अगर भगवान की बात करो तो हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं, क्योंकि तो भगवान से उनको बहुत नफरत है ना। तो हम उनको भगवान का कुछ संदेश नहीं देते हैं, भगवान की चर्चा नहीं करते हैं, तो उनको हम मतलब बुलाते हैं तो कुछ आसन सिखाते हैं कि भाई ये आसन करने से जो है आपका शरीर स्वस्थ होगा, है, और फिर ये मंत्र बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र, इसको करने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा। आप समझे, है, तो हम नाम नहीं बताते, नाम किसका नाम है, नहीं नाम नहीं, हम मंत्र बताते हैं कि इससे जो है मतलब आपके दिमाग का तनाव दूर होगा, तो वो जो है स्वीकार करते हैं, क्योंकि तनाव में तो पड़े हुए, नींद ही नहीं आती तो नींद की गोलियाँ खानी पड़ती है ना। तो शरीर स्वस्थ होगा और आपका मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ करने के लिए आसन और मन स्वस्थ करने के लिए मंत्र, तो मंत्र, और फिर मंत्र जपते जपते फिर हम उनको भगवद गीता की शिक्षा देते हैं, फिर वो स्वीकार करते हैं।
मतलब इस प्रकार से भगवान पे से महामाया का पर्दा हटाते हैं जब महामंत्र जप करते हैं और भगवान के ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं।
तो मतलब ये है कि फिर उन मतलब वो सेवा हो गई ना, सेवा न मुख्य ही जेवा दो, जेवा के द्वारा सेवा। अब मिड डे मील का जो मतलब प्रोग्राम है, मिड डे मील का जो है प्रोग्राम, लाखों की संख्या में बच्चों को जो प्रसाद दिया जाता है, वो मुसलमानों के भी बच्चे होते हैं, और प्रसाद के नाम पर नहीं दिया जाता, बच्चों को जो प्रसाद का नाम भी नहीं बताया, ये प्रसाद है, लेकिन तो भी वो प्रसाद का जो है असर वो हो रहा है, क्योंकि सेवा तो उनकी हो रही है, आप समझे। तो वो सेवा जो है मतलब हो रही है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, आप समझे। तो सरकार की ओर से भी मतलब बिल्कुल मनाही है कि भाई आप प्रसाद नहीं खिला सकते, और प्रसाद के नाम पर जो है मिड डे मील किचन में वो सरकार किसी भी तरह का सहयोग नहीं देगी कि आप प्रसाद खिला रहे हैं, कानूनी अपराध। प्रसाद नहीं खिला रहे, हम तो प्रसाद खिला रहे हैं उनको, तो प्रसाद का प्रभाव तो होगा ही है। उसी प्रकार से नाम भगवान का आप जो है प्रचार नहीं कर सकते, हैं, वहाँ कानूनी अपराध है उनके यहाँ। चाइना में कानूनी अपराध है, या भगवान की बात नहीं कर सकते, फिर भी भगवान का नाम तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम से नहीं दे रहे हैं आप, मंत्र के रूप में दे रहे हैं कि मंत्र का जाप करो, ये जो है ना, और वो अपराध करेंगे अगर आप नाम बताएं। एक एमपी थे वो धर्म सिंधु प्रभु, यहाँ आए नहीं आए उनके, है नहीं है, आना था उनको, तो उनके ससुर जो है एमपी थे उस समय, अभी तो नहीं है, तो मुझे उनके ऑफिस में ले आए, तो मैं गया तो बातचीत करी, जब तो बातचीत करी तो वो जो है मतलब भगवान की निंदा करने लगे। हमने कहा भाई हमारा ये टॉपिक ही नहीं है, हम भगवान की चर्चा करने थोड़ी आए हैं, है? हम तो जो है मतलब ये चर्चा करने आए हैं कि भाई हम लोग जो है इस संसार में जो है बार बार जन्म लेते हैं और हम दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कहा कि आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया करो, 10 मिनट के लिए जाप किया करो हरे कृष्ण मंत्र का। तो बोले ये हरे कृष्ण मंत्र में राम का ये जो नाम है, कृष्ण का ये नाम है, ये तो ठीक नहीं, और कृष्ण की भी निंदा करने लगे, राम की भी निंदा करने लगे। मैंने कहा नहीं, ये नाम नहीं है, ये तो केवल मंत्र है, आपको जो है कुछ हम ये नाम नहीं दे रहे हैं कि ये राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, ये तो केवल मंत्र है, 10 मिनट के लिए आप केवल जाप करना है आपको बस। तो तैयार हो गए, इस बात से तैयार हो गए, है ना। तो किसी को अपराधों से बचाने के लिए हम उसको जो है केवल मंत्र देते हैं कि ये मंत्र का जाप करें, ठीक है ना। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया कि जो लोग महामाया के अंदर होते हैं उनको भी भगवान अपने आप को रियलाइज नहीं करते, लेकिन जब भगवान भक्तों को करते हैं योग माया के द्वारा आपको ढक लेते हैं, तो भगवान को किस स्थिति में समझा जा सकता है?
भगवान को
किस स्थिति में समझा जा सकता है?
भगवान को किस स्थिति में समझा जा सकता है? देखिए योग माया का जो प्रभाव है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अज्ञान में है। मैंने ये बताया कि जो योग माया के प्रभाव में भगवान को नहीं समझ पा रहे भगवान, तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची है ना। तो वो ज्ञान का बहुत ऊंचा धरातल है जहाँ की ज्ञान ढका हुआ है, आप समझे। तो ये भी एक दिव्य ज्ञान है कि वे कृष्ण को अपना पुत्र समझे, कोई अपना जो है कोई पति समझे, कोई अपना भाई समझे, कुछ भी समझे, और वो अंतरंगता हो, अपनापन हो कृष्ण के साथ, तो ये ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति है ना। बल्कि यहाँ तक कि कृष्ण तो फिर ये कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, बाद में ईश्वर हूँ। भगवान जो है मतलब अपनी पहचान इतनी अधिक करते हैं अपने भक्तों के संबंध में कि भगवान मतलब स्वयं अपने को एक तरह से भूल जाते हैं या अपने को नहीं जाना चाहते उस रूप में, क्योंकि उनको इतना आनंद आता है भक्तों के साथ संबंध में कि मैं यशोदा का पुत्र पहले हूँ, बाद में फिर संसार का ईश्वर हूँ। इसलिए यशोदा नंदन अगर आप कहते हैं उनको, तो परमेश्वर कहने के बजाय भगवान इस नाम से ज़्यादा प्रसन्न होंगे। पार्थ सारथी कहते हैं आप, राधिका रमण कहते हैं, तो इन नामों से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता उनकी उन नाम से नहीं, अजन्मा और अनंत सर्वव्यापी अच्युत, तो ये सब जो है नाम है, तो इतने मतलब वो नहीं है, प्रसन्न करने वाले नहीं भगवान को जितना उसमें प्रसन्न होते हैं, है ना। और भगवान भी जो है मतलब यही चाहते हैं कि ये संबंध है मतलब इतना ज़्यादा प्रगाढ़ होता है कि वे अपने ज्ञान को ढके रहते हैं। तो मातेश्वरा को जब ज्ञान हो गया, कृष्ण के मुख में जो है पूरा ब्रह्मांड देखा मातेश्वरा ने, है ना। वो फिर विचार करने लगी कि शायद ये मेरा पुत्र नहीं है और ये ईश्वर है, और मैं तो बहुत बड़े अज्ञान में हूँ, मैं अपने को जो है यहाँ इस वृक्ष की मालकिन समझ रही हूँ, है। तो भगवान ने क्या सोचा, ये क्या जो है भगवान बोर हो गए इससे, और भगवान ने जो है माता शोदा को जो है योग माया से उनके ज्ञान को ढक दिया, है ना। और माता ने देखा कि बालक डरा हुआ है, हाथ हाथ में जो छड़ी है फेंक दी और बालक को गले से लगा लिया। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वो इतने अधिक जो है उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं कि वे जो है इसको जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए अर्जुन ने भी जो है जब भगवान का विश्वरूप देखा और कहा कि मैंने आपको सखा मान करके जो बोला है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ इनके लिए, अब आगे से मैं नहीं बोलूँगा ऐसा, तो भगवान जो है फिर यही बोलते हैं, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, कि तुम्हें इस प्रकार की व्यथा नहीं होना चाहिए, वही विमूढ़ ये पागलपन नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान कहते हैं पहले मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बाद में फिर इस संसार का ईश्वर हूँ, नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ, जो भी वो बाद में हूँ, पहले मैं तुम्हारा मित्र हूँ। भगवान इतनी पहचान करते हैं, माता यशोदा के भगवान पुत्र हैं तो सबसे पहले तो अपने को वो अपनी पहचान करते हैं इस रूप में, भक्तों भक्तों के बस में है भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति भाव के भूखे हैं, उनके पास सब कुछ है, केवल एक ही कमी है, क्या, कि वो प्रेम चाहते हैं, भक्तों का प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, राधा से जब उनका जो है संबंध जोड़ा जाता है, राधापति राधा नाथ है ना, तो ये जो नाम है ये उनको राधिका रमण है ना, तो ये सब जो नाम है उनको ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और कुछ, हाँ जी, इनके बाद फिर ये,
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा प्रश्न यह है कि गोलोक वृंदावन में तो कोई भी भगवान को भगवान नहीं मानता, जो वृंदावन धाम में है सब लोग भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि भगवान है, उनसे अपना सामान्य संबंध बना के रखते हैं, कोई पिता, कोई मित्र, कोई बंधु, लेकिन हमें तो सपने में भी पता है कि ये भगवान है, हमें सपने में पूछेगा कि कौन भगवान, बोलते कृष्ण भगवान है।
नहीं देखो, ऐसा है कि वो स्थिति जो है हम लोग समझ नहीं सकते कि भगवान जो है स्नेह लेना चाहते हैं अपने भक्तों से, तो वो उस भाव में हमेशा रहते हैं, भगवान स्वयं भी अपने उसी भाव में रहते हैं, लेकिन तो भी भगवान का जो ऐश्वर्य है वो प्रकट होता रहता है, आप समझे, जैसे ब्रज में भी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते रहते थे, हैं, तो जब भगवान माता का स्तन पी रहे हैं, यशोदा जी गोद में लेटे हैं और स्तन पी रहे हैं, स्तन पीते पीते बच्चा जैसे मुँह खोलते ना, जब भाई में दिखा दिया तो माता को दिखा दिया, फिर से ज्ञान ढक दिया, तो इसलिए मैंने कहा ना कि वो अज्ञान नहीं है, अज्ञान की स्थिति नहीं है, कि भाई आप कहें कि ये तो एक बड़े मतलब एक दुर्भाग्य की बात है कि भगवान का इतना ऐश्वर्य जो हम लोग देखते हैं उसका जो आनंद है उनको नहीं मिल रहा है, उनको आनंद नहीं मिल रहा है, तो ये भी तो एक कमी हो गई ना, तो वो कमी नहीं है, वहाँ पर इस चीज़ की कमी नहीं है, वे कृष्ण को जो है मतलब देख लेते हैं, कृष्ण का सब ऐश्वर्य देख लेते हैं, है ना, जैसे कृष्ण के सखा हैं, हैं, उन्होंने देख लिया, इंद्र भी आए हैं कृष्ण के चरणों में जो है गिर रहे हैं और अपने मुकुट को रगड़ रहे हैं कृष्ण के चरणों में, नंद महाराज ने देखा, वरुण देवता भी अपने मुकुट रगड़ रहे हैं कृष्ण के चरणों में, हैं, मेरा बालक है, मेरा बालक का जो लोक है ये तो उनसे भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये वरुण लोक में इतना ऐश्वर्य था, इतना दिव्य स्थान था, वो लोग भी जो है कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे पुत्र का तो स्थान और भी ऊंचा होना चाहिए, क्या है, तो भगवान ने दिखा भी दिया अपना लोक भी दिखा दिया, इसलिए हम समझ नहीं सकते ना, हम समझ नहीं सकते उनका कितना सौभाग्य है, उनके स्वभाव में कोई कमी नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है मतलब छूटे, ऐसा भी मत समझिए दूसरे अवतारों की लीलाएं नहीं होती वहाँ कृष्ण के जितने भी अवतार हैं सब उनको उनको उनके भी दर्शन होते हैं, उनकी भी लीलाएं वो देखते हैं, उनका भी आनंद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो जीवन जो है मतलब एक ऐसा है कि हम लोग कैसे जान सकते हैं, हमारी सीमित बुद्धि से हम लोग समझ नहीं सकते उस स्थिति को, इसलिए मैंने कहा कि अज्ञान तो है ही नहीं, वहाँ अज्ञान नहीं है, महामाया में कोई व्यक्ति है अज्ञान में, उसको कुछ पता ही नहीं है इतना भगवान का जो है मतलब ऐश्वर्य है, क्या क्या मतलब गीता में भगवान ने कहा है ना, कितनी कितनी मतलब बातें गीता में भगवान ने बताई हैं, उसका कितना रस है गीता में, तो उनको जो है नहीं मिल रहा है ना, लेकिन उनको जो है मतलब कोई कमी थोड़ी है। हाँ जी,
मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, वो तो उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, वो तो हमें पता है, लेकिन उन्हें ये प्रश्न है कि हमारा संबंध कैसे बनेगा भगवान, हमें तो पता ही भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये है नायक है, जिससे हमें पता ही इतना, हमें यही पढ़ते भी हैं,
जब आपको ये पता चल जाता है तो तो आप भक्ति की विधि और अपनाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप भक्ति की विधि अपनाते हैं, फिर आप और जितना अधिक आप इस बात को समझते हैं और आप समझते हैं कि भौतिक संसार ये जो है कष्टों का स्थान है, अगर हम नहीं शरण लेंगे तो क्या स्थिति है और शरण लेंगे तो क्या स्थिति है, तो ये अंतर जो है आप जितना समझते हैं उतना अधिक आप इसको अपनाते हैं, है ना। फिर आप भक्तों का संग करते हैं, आप भक्तों के संग से दूर रहते हैं, अज्ञान से आप दूर रहते हैं, ज्ञान को आप जो है स्वीकार करते हैं, ठीक है। आपका अंतिम प्रश्न है।
जी मेरे दो प्रश्न,
दो प्रश्न है, एक प्रश्न
छोटे छोटे।
अच्छा छोटे छोटे।
भैया आपने जैसे बताया कि चैतन्य महाप्रभु अपने छिन्नों को ढक लेते थे, उनको समझ में पावर नहीं करते थे, तो मैं सोच रहा था कि जैसे कृष्ण है, कृष्ण जब वृंदावन ब्रज में विहार करते हैं तो उनके चरण चिन्ह तो हमें हर जगह पे होते हैं, और जो ग्वाल बाल थे ये सारे नारायण के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, नहीं यशोदा माता नारायण के भक्त थी,
नारायण के भक्त। हाँ,
क्योंकि जब हमें पता चला है जब उनके ऊपर खतरा आता है तो भगवान नारायण के अलग अलग नामों से उनकी,
इसमें ऐसा समझना है कि वे नारायण के भक्त थे। और कृष्ण को गर्ग जी ने भी जब बताया तो ये कहा कि तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समुगुणे, कि हे नंद तुम्हारा जो पुत्र है इसमें नारायण के गुणों में नारायण के समान है, ये नहीं कहा कि नारायण है तुम्हारा पुत्र है, ये है तो तुम्हारा पुत्र है लेकिन गुणों में नारायण के समान है। तो पुत्र का जो भाव है वो उनका बहुत प्रबल है, हमारे पुत्र में नारायण का आवेश है, नारायण की कृपा है, नारायण की शक्ति से हमारे पुत्र की रक्षा हो रही है, ये तो भी चिंता भी है, चिंता भी है कि पुत्र की रक्षा कैसे होगी, लेकिन जब हो जाती है तो नारायण की कृपा से रक्षा हो गई हमारे पुत्र की, ये भाव है, ठीक है ना।
दूसरा प्रश्न था जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कृष्ण छोटे से हैं स्तनपान कर रहे थे यशोदा माता का, कभी कभी जमाई देते हैं उससे रस पड़ जाते हैं, तो मैं सोच रहा था कि अभी जैसे कुंती महारानी बोलती हैं कि नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नाटक कर रहा है कोई व्यक्ति स्टेज पे, वैसे ही भगवान है लेकिन ये अलग अलग रूपों में नाटकों की तरह ले था, मतलब अगर ऐसे भगवान कर रहे हैं तो जैसे मतलब वो रियल भाव कैसे हो सकते हो, मतलब उसमें
कुंती महाराज जो कह रही हैं कि माया जमनिका छन्नम प्रज्ञा ध्रोक्ष मध्यम धनक्ष से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा, मूढ़ दशा का मतलब है जो माया के द्वारा महामाया के द्वारा जो मोहित हैं तो वे जो है आपको नहीं पहचान पाते। तो कुंती महारानी को उदाहरण दे रही हैं कि नाटक में जब मेकअप कर दिया जाता है किसी पात्र का तो सामान्य लोग नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, वैसे उसको जानते हैं कि भाई ये हमारे संजीव गुप्ता जी हैं, हम इनको जानते हैं, और नाटक में आ गए है ना कोई रूप धारण कर लिया राजा का या भिखारी का तो पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा मेकअप कर लेते हैं। तो उसी तरह से भगवान को जो है पहचान नहीं पाते हैं कि भगवान जो है अपना मतलब अपने को छिपाते हैं, तो कुंती महारानी को तो ये कहना है।
कहीं ये आर्टिफिशियल तो नहीं हो जाता है, मतलब भगवान अरस का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये मैं मेरे जस्ट
ठीक है बाद में, ठीक है अब आप जो है बाद में प्रश्न करें। धन्यवाद। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री गौड़ गाय भगवान की जय।